الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين تنبت بالدهن والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس رمضان المبارک کی تفسیر کلاس میں ہم سورۃ المؤمنون کی تفسیر معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے پڑھ رہے ہیں شروع کی 11 آیات کے بارے میں ہم نے کافی ساری ڈسکشن کر کے اس کو کل مکمل کیا تھا آخری جو بات چل رہی تھی پچھلی کلاس میں جو چلائی تھی وہ ایمان کی تعریفات کے بارے میں تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں لازمی ہوتی ہیں اور ایمان کو کیا چیز ختم کر دیتی ہے جس کو کہ کفر کہتے ہیں تو کفر کی کیا حقیقت ہے ایمان کی کیا حقیقت ہے کچھ اس طرح کی تفصیلات کل ڈسکس ہوئی تھیں مزید بھی بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی جا سکتی ہیں لیکن ابھی فی الحال ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ سوالات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو کہ کلاس میں ایڈریس کرنے ہوتے ہیں تو ایک بات بس یہ عاجز کہہ کر کے ایمان والی بحث کو ابھی مکمل کرے گا وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے آپ کے سامنے ایمان کی تعریفات اور کفر کے بارے میں بیان کیا ہے تو ایک بات بہت زیادہ ذہن نشین رکھنی ہے ذہن میں ایک بات بہت زیادہ رکھنی ہے کہ یہ سب کا سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اپنے لیے اپنے ایمان کی حفاظت آسان ہو سکے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت آسان ہو سکے ٹھیک ہے نا اپنے اپنی اولاد کی اپنی رعیت کے ایمان کی حفاظت یہ ہے اس کا مقصد ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص سے ہم نے کوئی ایسی بات سن لی جو کہ ہمارے خیال میں ایمان کے منافی ہے کوئی ایسی بات اس کو کرتے ہوئے دیکھ لیا جو کہ ہمارے خیال میں ایمان کے خلاف ہے تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیں یا اس کو کافر کہنا شروع کر دیں یا اس کو کافر سمجھنا شروع کر دیں یہ ہرگز ہرگز اس نیت کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو کوئی اس طرح کی غلطی ہرگز نہ کرے یہ کام جو ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں کہ کسی شخص کو ہم کافر سمجھیں یا کسی شخص کو کافر کہیں جو کہ مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کام بے شک ہے لیکن جو اس منصب کے اوپر فائز علماء کرام ہیں یہ ان کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں کہ وہ کافر ہو گیا ہے اور ظاہر ہے جب کوئی کافر ہو گیا ہے تو اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے اب جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے اب جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں رہا ہے अब जो है वो हम उसके साथ मिलना जुलना खत्म कर देंगे क्योंकि अब वो काफिर हो गया है। हमने क्लास में पढ़ा था कि ऐसी शख्स ऐसी बात करने से शख्स जो है वो काफिर हो जाता है, किसी एक बात की नफी कर देने से वो ईमान के दायरे से खारिज हो जाता है, तो इस वजह से फलाना रिश्तेदार फलाना दोस्त या फलाना कॉलीग जो है वो ईमान के दर्जे से खारिज हो गया। अब हमने अपनी तरफ से फैसला कर लिया और उसके साथ फिर काफिरों जैसा रवैया रखना शुरू कर दिया, ये हम नहीं कर सकते और इस मकसद से हमने सारी बहस बिल्कुल भी नहीं करी है। अगर कोई ऐसा मसला किसी के अंदर आपको नजर आता है तो आप उसको उलमा के सामने रखें और फिर उनसे मशवरा करें कि जी मुझे इस मामले में क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे शख्स के साथ जो कि ये बातें कह रहा है मुझे इसके साथ क्या मामला रखना चाहिए। जो उलमाए कराम आपको मशवरा दें उसके हिसाब से करें, खुद से फैसले हरगिज हरगिज ना करें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके अंदर तावील की गुंजाइश भी होती है, एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश होती है, कोई ना कोई आप जो है ना वो उसकी अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, जिस अंडरस्टैंडिंग के तहत वो शख्स जो है वो ऐसी बात कहने से काफिर नहीं हुआ है, राइट? लेकिन हमारा इल्म चूंकि बहुत ही सुपरफिशियल होता है, बहुत ही कम होता है, तो हमें वो तावील समझ में नहीं आ रही होती, तो हम जो है ना बिल्कुल जाहिर जाहरी अल्फाज के ऊपर फैसला करके किसी शख्स को काफिर समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि तावील की जा सकती है उसकी बात की, ठीक है? और ये तावील जो है वो जाहिर उलमा ही कर सकते हैं, हमारे तो इल्म में इतनी गहराई नहीं होती कि हर बात की तावील कर सके ना, ठीक है? तो इसके साथ फिर हम आगे चलते हैं। कुछ जो सवालात हैं लोगों के तो वो जरा थोड़ा सा तो ठहर जाए ना, आप क्लास शुरू होने से पहले ही सवाल अपना यहाँ पे डाल दिया, तो कुछ हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं आगे की आयात का, उसके बाद फिर सवालात को देखते हैं। तो अल्लाह ताला सूरतुल मुमिनून के अंदर आगे फरमाते हैं आयत नंबर 12 से, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين اور واو کا ترجمہ اور سے کرتے ہیں اردو والا، اور لقد تحقیق یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے اردو میں تحقیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، انگریزی میں انڈیڈ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ولقد تحقیق کہ ہم نے خلقنا الإنسان ہم نے تخلیق کیا انسان کو، من من کا مطلب سے یعنی فروم جیسے انگریزی کا ہوتا ہے، سلالہ من طین، سلالہ کا لفظ جو ہے یہ یہاں پہ ترجمے میں جو کہ جو ترجمہ جو ہے نا یہ آپ کو اس کلاس میں بتایا نہیں ابھی تک کہ یہ حضرت مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیخ الہند کے لقب سے بھی مشہور ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں جا کر کے شیخ الہند بنے، یعنی بہت بڑے عالم بنے، حتیٰ کہ برے صغیر کے اکثر علماء نے ان کو اپنا شیخ مانا، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے انگریز کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ تحریکیں بھی آزادی کی چلائیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمود الحسن، تو انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا اردو زبان کے اندر، اس ترجمے کو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرف القرآن کے اندر بطور ترجمے کے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا کیا ہوتا جو میں، ہاں اس زمانے کی اردو جو تھی بہت زیادہ یعنی مشکل اردو تھی، کافی یعنی متروک الفاظ بھی جو اب ترک ہو چکے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، تو ان الفاظ کو جو ہے وہ آسان اردو آج کل کے دور کی اردو ہے اس سے چینج کر دیا ہے بس۔ تو سلالہ کا ترجمہ یہاں پر چنی ہوئی، چنی ہوئی سے کیا، اب چنی ہوئی کا لفظ ہمیں اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، تو پھسلتی ہوئی، سلپری، ہماری انگلو کے اندر اس کو سلپری، ٹھیک ہے، جس جو کہ یعنی ایسی چکنی مٹی، چکنی بھی اس کو جس کو چکنی چیز جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ پھسل جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چکنی مٹی من تین، تین کا ترجمہ مٹی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے انسان کو چکنی مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کیا چیز ہوتی ہے؟ تخلیق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کو عدم وجود سے وجود میں لے کر کے آنا، یعنی جو چیز پہلے وجود رکھتی ہی نہیں تھی، موجود ہی نہیں تھی، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی نا، اس کو ایگزسٹنس میں لے کر کے آنا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ صنعت کہتے ہیں، صنعت و حرفت کا بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ انگریزی میں، مینوفیکچرنگ اور صنعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں ان کو جوڑ جاڑ کر کے کچھ بنا لیا، ٹھیک ہے؟ तो तखलीक एक अलग चीज है और सनत एक अलग चीज है। अल्लाह ताला ने ना इंसान को तखलीक किया, यानी पहले इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उसके कुछ कुछ अज्जाए तरकीबी बनाए और कुछ ऐसी चीजें बनाई जो के बगैर अज्जाए तरकीबी के हैं, बगैर इंग्रेडिएंट्स के हैं। क्या मतलब? कि जो जिस्म बनाया इंसान का, तो उस जिस्म के लिए अल्लाह ताला ने पहले इंग्रेडिएंट्स बना दिए, मिट्टी, आग, हवा, पानी, ठीक है ना। ये चार एलिमेंट्स ऑफ नेचर कहलाते हैं, चार एलिमेंट्स ऑफ नेचर, अज्जाए अरबा, ठीक है। चार, ये चार जो हैं इनको मिला करके अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म बनाया है, तो ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, राइट। ये तखलीक तो ना हुई, ये तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर जो जान आती है ना, वो आती है रूह से, राइट। रूह जब इस जिस्म के अंदर जाती है तब वो इंसान बनता है, ठीक है। तो रूह जो है ना, ये कोई अज्जाए तरकीबी से अल्लाह ने नहीं बनाई, बल्कि रूह जो है मिन अम्रे रब्बी, अल्लाह का हुक्म हुआ और उससे रूह जो है वो वजूद में आ गई, ठीक है ना। तो उसके अज्जाए तरकीबी नहीं है रूह के पहले ये चीजें बन चुकी थी, फिर उनको जोड़ जाड़ करके अल्लाह ताला ने रूह बना दी, नहीं, ठीक है। ये काम जो है वो जिस्म के साथ किया। तो जिस्म वैसे भी हमारी हमारे जो जो यानी कोई कह सकता है कि अच्छा जिस्म तो है ना, यानी मैन्युफैक्चर्ड, तो रूह जो है वो तो एक वो तो आधी चीज है, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, लेकिन जिस्म तो मैन्युफैक्चर्ड है ना। तो फिर तखलीक का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? वो इसलिए कि जिस्म की हैसियत जो है ना, वो बहुत ही कम है हमारे वजूद के अंदर। जिस्म सिर्फ और सिर्फ एक एक व्हीकल के तौर पर है, एक 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 जैसे सवारी क्या कहते हैं, सवारी का जानवर होता है, या सवारी के लिए जो जो गाड़ी होती है ना, जिस्म तो उस तरह वो हैसियत रखता है। असल जो हैसियत है हमारे अंदर, वो तो हमारी रूह ही की है, रूह ही गालिब है हमारे अंदर, उसी से हम जिंदा होते हैं, उसी के जिस्म से अलग हो जाने पर हम मर जाते हैं, ठीक है ना। और फिर जिस्म जो है वो तो वैसे भी हमारा गल सड़ करके मिट्टी में मिल जाता है, खाक में मिल जाता है, और फिर ये जिस्म जो है वो कयामत के दिन दोबारा से अल्लाह ताला बना तो देंगे, लेकिन जन्नत में जाने के ऊपर या जहन्नुम में जाने पर अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए, वहां पर हमें एक नया जिस्म अता फरमाया जाएगा। तो इस वजह से ये जो जिस्म है ना, ये जिस्म तो वैसे भी एक बहुत ही कम हैसियत की चीज है, असल हैसियत तो हमारी रूह के है, रूह की है जिसको अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है फ्रॉम नथिंग, ठीक है। थुम्मा जालनाहु नुत्फतन, फिर उसके बाद हमने बना दिया उसको नुत्फा, ठीक है। जाला यजअलू का मतलब होता है कर दिया, या बना दिया से भी इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर दिया, बना दिया, रख दिया। नुत्फतन, तुम्मा का मतलब होता है फिर, देन, तो हमने उसको कर दिया नुत्फा। ये नुत्फा क्या होता है? ये एक एक लिक्विड किस्म का बहुत ही छोटा सा कतरा, ठीक है ना, लिक्विड, नॉट पानी तो नहीं, लेकिन है ये लिक्विड फॉर्म की। बेसिकली ये क्या है? ये एक बॉडी सेल है, सेल, ठीक है ना, CELL, खुलिया जिसको उर्दू में कहते हैं, या खुलिया ही कहते हैं ना। तो ये यानी माइक्रोस्कोपिक किस्म की एक 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 चीज है, जिसको कि आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके ही इस चीज को देखा जा सकता है, बहुत ही छोटी। तो उसको हमने नुत्फा कर दिया। फी करारिम मकीन, एक जमे हुए ठिकाने में। मकीन जैसे हम उर्दू में कहते हैं मकान, प्लेस, राइट, घर, उसको मकान कहते हैं, तो अरबी में उसको मकीन कहा। और करार जो है, करार का मतलब जो कि ठहरा हुआ है, जिसको कि करार है, राइट, स्टैब्लिश किस्म का। तो उसको हमने एक जमे हुए ठिकाने के अंदर रख दिया, नुतफे को, यानी एक महफूज मकाम के अंदर उसको हमने ठहरा दिया। ये महफूज मकाम क्या होता है? जिसको कि आप फीटस कह सकते हैं, ठीक है ना, रहम, अरबी में उसको रहम कहते हैं, उर्दू में भी इसके लिए माँ का रहम जैसे लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उस फीटस के अंदर इस नुत्फे को हमने रख दिया। थुम्मा खलकना नुत्फता अलकतन, फिर उसके बाद हमने نطفه को यानी से तखलीक किया अलका को, यानी पहले अलका नहीं होता था, अब जो है ना नुतफा को ऐसे तब्दील किया कि वो अलका बन गया। अलका क्या होता है? अलका का जो लफ्ज है ना अरबी जुबान के अंदर, ये जैसे एक एक जमा हुआ खून, ब्लड क्लॉट, ठीक है, जब खून की बूंद होती है, कतरा होता है, तो थोड़ी देर में वो क्लॉट हो जाता है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसी चीजें रखी हैं कि खून जम जाता है, राइट। अगर ये ज्यादा जम जाए तो भी मसला हो जाता है, और अगर ये ना जमे तो भी मसला हो जाता है। बहरहाल ये जमने की सलाहियत अल्लाह ताला ने खून के अंदर रखी है। गालबन हीमोग्लोबिन, इतने ज्यादा मैं तहकीक नहीं कर सका क्लास से पहले, वो चीजें जहन में सारी क्लियर नहीं है क्योंकि मेडिकल साइंस का तो स्टूडेंट वैसे भी आजिज नहीं है। तो चंद बातें जो याद हैं या जो इधर उधर से पड़ी हुई थी तो आपके सामने इस तर्जुमे के दौरान रखने की कोशिश करेंगे। तो अलका जो यानी नुतफा जो बॉडी सेल था ना, जो कि एक लिक्विड बेसिकली ट्रांसपेरेंट टाइप का एक लिक्विड था, तो उसको अल्लाह ताला ने एक अलका कर दिया जो कि जमे हुए खून की तरह से अब एक एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं रहा। अच्छा, ये जो अलका है ये एक ऐसा जमा हुआ लिक्विड होता है कि जो कि चिपक जाता है, क्लिंग हो जाता है किसी चीज के साथ, ठीक है। और क्लिंग होने से क्या होता है, यानी ये जैसे कि मिसाल के तौर पर बच्चे होते हैं ना, वो खेलते हैं, खेल कूद का काम करते हैं ना, तो जैसे वो किसी बाग में खेल रहे हैं, तो अब बच्चे ने जो है ना वो छलांग मार के करके किसी दरख्त को पकड़ लिया और उससे लटक गया, दरख्त को पकड़ करके उससे लटक गया, तो इसको कहेंगे कि ये क्लिंग, ही क्लिंग्ड ऑन टू द ट्री, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये अलका जो होता है ना, ये लटका हुआ होता है, इसने पकड़ा हुआ होता है एक सरफेस को, ठीक है, तो ये इस शक्ल की चीज बन जाता है अलका, ठीक है। अब अलका बनने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ, फिर हमने अलका को जो है ना वो मुद्गा बना दिया, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, ये नुतफा जो बना था तो नुतफे के अंदर फिर माँ और बाप दोनों के अज्जा थे, ठीक है ना, इसी वजह से कुरान में इसके लिए नुतफत अमशाजिन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, ठीक है ना, यानी एक मिक्सचर होता है ये मर्द और औरत दोनों के फ्लूइड्स का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है नुतफा को जो तख्लीक करते हैं ना अल्लाह सुब्हान व तआला, थोड़ा सा पीछे जा करके, नुतफा जो है ये हर नुतफा जो है ना वो क्या कहते हैं, एक इंसान के बनने का सबब नहीं बनता, हर नुतफा इंसान के बनने का सबब नहीं बनता, बल्कि ये कब इंसान बनता है, यानी कब ये जाकर के बाकायदा बेबी की शक्ल में कन्वर्ट होता है, वो उस वक्त होता है कि जब इसके अंदर पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की आ जाए। ह्यूमन बीइंग के जीन्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स अगर जमा हो जाए ना, तब ये बाकायदा एक इंसान की शक्ल में तखलीक हो जाता है, ठीक है। अब ये फिर आगे बढ़ता है, और अगर ये ऐसा ना हो सके तो फिर ये कंसेप्शन नहीं होती, यानी ये बच्चा आगे जाकर के नहीं बनेगा, ठीक है। तो नुतफा हो गया, फिर नुतफे के बाद जो है ये अलका बना, तो अलका जो है ना ये जो कुछ इधर उधर एम्ब्रियो बनता है फिर, जी हाँ माशाल्लाह, यार तो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर जो है वो क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो जाहिर है ज्यादा पता है बहुत इसके बारे में। तो क्या लिखते हैं कि जी ये 15th डे में ये बनता है अलका, और 23वें दिन में जाकर के ये अलका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना ये एम्ब्रियो फिर आगे जो है वो डेवलप होना शुरू करता है, और ये एक चिपकने वाली चीज बन जाता है, जिस जो कि अलका का एक मतलब है, यानी चिपकने वाली क्लॉक, क्या कहते हैं, अभी मैंने कहा था ना क्लिंगिंग टाइप की चीज, ठीक है, ब्लड क्लॉट जैसी इसकी शक्ल होती है, और ये क्लिंग किया हुआ होता है सरफेस को, और वहां से ये लटक रहा होता है, सस्पेंडेड होता है ये, ठीक है, तो अलाका का लफ्ज इस्तेमाल किया, अलाका के अरबी लफ्ज के अंदर ये सारे मानी हैं मौजूद, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को यहां पर इस्तेमाल किया जिस लफ्ज के अंदर ये सारे मानी और मफहूम थे, ठीक है। यानी क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने इस लफ्ज को कुरान में इस्तेमाल किया है, अल्लाह ताला ने पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया है, ये लफ्ज तो पहले से अरबों की लैंग्वेज के अंदर मौजूद था, और अरब जो है ना वो इस लफ्ज से ये मानी और मफहूम लेते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के इस वाले स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया। ये है कुरान का मोजजा, ठीक है, कि ऐसे लफ्ज को इस्तेमाल किया जो कि इंसान की जो तख्लीक हो रही होती है 15वें दिन से लेकर के 23वें दिन तक, जो उसकी शक्ल होती है ना, उस शक्ल को ये वाला अरबी लफ्ज जो है वो बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, राइट। तो ऐसा लफ्ज कौन इस्तेमाल कर सकता है जिसको के अंदर की हकीकत का पता हो, वही इस्तेमाल कर सकता है ना, ऐसा लफ्ज जो कि बिल्कुल फिट बैठता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मौजजात कुरान में से है, जिसको कि आजकल जो है वो साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ द कुरान का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला अलका फरमाते हैं कि हमने अलका को जो है ना मुदगा कर दिया। अब ये मुदगा का जो लफ्ज है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, कि गोश्त का लोथड़ा, इसके लिए जो है ना वो मुदगा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यानी लंप ऑफ जैसे मीट, ठीक है ना। अच्छा, एक और इसके अंदर जो बहुत ज्यादा यानी जबरदस्त बात है ना, वो क्या है कि ये जो मुदगा का लफ्ज है ना, ये किसी ऐसी चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि इंसान ने अपने मुंह में लेकर के चिबा दिया हो, अपने दांतों से, अपने मुंह में लेकर के अपने दांतों से चिबाया हो। जैसे आजकल बच्चे जो है वो च्युइंग गम खाते हैं, तो च्युइंग गम जो है ना उसका साइज भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुंह के अंदर फिट होगी, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना दांतों के निशान भी पड़ जाते हैं। अगर आप उसको एक दफा दांत चबा करके फिर बाहर निकाल लें, उसके ऊपर दांतों के निशान होंगे। तो ये जो मुदगा होता है ना, इस स्टेज के ऊपर इसका साइज भी 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर बाकायदा दांतों के जैसे निशान पड़े हुए होते हैं, दांतों के जैसे निशान, ठीक है। तो च्यूएबल सब्सटेंस विथ टीथ मार्क ऑन इट, ये मुदगा की तारीफ बनती है अरबी जुबान के अंदर। ऐसी चीज के लिए मुदगा का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी चीज के लिए भी मुदगा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अलाका को जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने मुदगा बना दिया, उसके बाद हमने क्या किया, फखलकना अलमुदगता इवामन, फिर हमने मुदगा जो को जो है ना वो तख्लीक किया, एक बिल्कुल नई चीज उसके उससे बना दी। पहले तो ये मुदगा था, अब हमने एक नई चीज बना दी, उसको कहते हैं इवामन, ठीक है, उसको हमने इवामन बना दिया। यानी जिसको इजाम, ये यानी हड्डियां, ठीक है। तो अब जो है ना इस स्टेज के अंदर जाकर के फिर कार्टिलेजेस बनती हैं, बोन्स, जैसे जिसको कि हम कुर्री हड्डी कहते हैं ना उर्दू के अंदर, यानी बहुत हार्ड हड्डी नहीं होती बल्कि सॉफ्ट सी हड्डी होती है। मुर्गी खाते हुए ये कुर्री हड्डी बहुत ज्यादा उसके अंदर होती है, बकरे के अंदर और भी कम होती है, ठीक है, जब हम बकरा खा रहे होते हैं। तो ये कुर्री हड्डी जैसे कार्टिलेज, तो इस किस्म का, इस तरह की हड्डी से एक स्केलेटन बन जाता है, एक हड्डियों का ढांचा सा बन जाता है। इसके बाद इसके बारे में साइंसदानों ने जो 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 अल्ट्रासाउंड मशीन और दूसरे इमेजिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए से इसको स्टडी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस है ना ये 7th वीक में जाकर के स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद फरमाया फकसौना अलअवामा लहमा, फिर हमने इन हड्डियों के ऊपर जो है ना वो गोश्त चढ़ाना शुरू कर दिया, टिश्यूज आम जुबान में कह सकते हैं इसको। तो इन हड्डियों के दरमियान फिर वो टिश्यूज से जो है बाकायदा फिर बॉडी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम अनशा ना हो, फिर हमने इसको यानी अनशा युनशु इनशा अन, ये इसको हमने फिर ना ग्रोथ दी, बढ़ाया, डिवेलप किया, ठीक है। तो अब इसको हमने डिवेलप करके जो है ना वो हमने खलकन आखर एक दूसरी फॉर्म बना दिया। खलकन का मतलब फॉर्म, एक मखलूक, एक 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 यानी एक 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 अलग किस्म की जात बना दिया, ठीक है ना। खलकन आखर, ये जो बात फरमाई अल्लाह ताला ने, क्या मतलब, हमने इसको यानी इस एम्ब्रियो को बढ़ा करके जो हमने फिर मुद्गा बनाया, मुद्गा जो है वो उसके ऊपर हमने हड्डियां चढ़ाई, हड्डियां चढ़ाने के साथ साथ उसके ऊपर फिर हमने गोश्त चढ़ा दिया। अब क्या हुआ, ये एक नई मखलूक बन गई। अब बाजाहिर तो देखने में ऐसे ही लगता है कि हाँ भाई ये इंसान बन गया, ठीक है, बस इतना काफी है। लेकिन साइंस ने बताया, यानी अब अंदर जाकर के जो उसकी तहकीक करी और सब कुछ, तो बताया कि अब जो ये जो फॉर्म बनती है ना, ये फॉर्म बनने से पहले पहले तक जो ये चीज थी जो डेवलप हो रही थी ना, इस फॉर्म से पहले इसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं था। इसमें और जानवरों में यानी हाथी, घोड़ा, उनके भी इसी तरीके से डेवलपमेंट होती है। वहां पर भी नुतफे वाला मामला हो रहा होता है, वहां पर भी मुदगा वाला मामला हो रहा होता है, वहां पर भी जो है वो इज़ाम चढ़ रहे होते हैं, लहम चढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें और इंसान के अंदर जो सब कुछ हो रहा होता है उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। इस मुकाम पर आकर के फर्क पैदा हो जाता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है, खलकन आखर एक डिफरेंट किस्म की मखलूक बन जाती है। अब इसके ऊपर हदीस मुबारका को जब हम इसका इंतबाक करते हैं तो पता चलता है कि ये जो वक्त होता है ना कि जिसके अंदर ये खलकन आखर बन रहा होता है, यही वो वक्त होता है कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक फरिश्ता आकर के रूह फूंकता है, ठीक है। ये जो रूह फूंकने वाला वक्त होता है, कितने वीक्स बनते हैं, अराउंड शायद 40 वीक्स बनते हैं, नहीं 40 वीक्स तो हाँ नहीं 40 दिन, राइट। तो इतने दिनों के बाद जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक एक फरिश्तों को भेजते हैं और वो फरिश्ता जो होता है ना वो उसके अंदर रूह फूंक देता है। अब जो रूह फूंक दी जाती है इसके अंदर, तो इस जिस्म के अंदर जो है ना फिर रूह भी मिल गई, अब ये इंसान बन जाता है, अब ये अल्लाह का बंदा बन जाता है। अब्द की तारीफ जो होती है ना, अब्द जिसको के बंदा कहते हैं उर्दू के अंदर, ये इस वक्त से शुरू होता है, ठीक है ना। तो क्या जबरदस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्वीर खींची है एक ऐसी डेवलपमेंट की कि जिस डेवलपमेंट को आज की इंस्ट्रूमेंटेशन वाली वाली वाले दौर से पहले कोई नहीं देख सकता था, मुमकिन ही नहीं किसी को, यानी खोल के अगर देखने की कोशिश भी करें ना तो इतना छोटा और इतना छुपा हुआ होता है कि कोई नहीं देख सकता सिवाय इन इमेजिंग टेक्नोलॉजीज के, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की शान, और अल्लाह ताला ने खासकर इन सारी तफासील को, इन सारी तफसीलात को अपने कुरान के अंदर रखा, ठीक है ना। अब क्यों रखा, इसमें क्या हिकमत समझ में आती है, एक तो ये कि भाई उस जमाने में जो मुसलमान पढ़ रहे होते थे तो उनको तो इन तफसीलात का नहीं पता होता था, तो वो पढ़ लेते थे कि हाँ भाई अल्लाह ताला ने फरमाया है तो ऐसे ही होता होगा, ठीक है ना। उस जमाने में कुरान के ऊपर ईमान लाने के लिए जो ईमान वाले होते थे ना, उनका इखलाक, उनका किरदार, उनका सिद्क, उनकी अमानत इतनी काफी होती थी कि उनको देख करके लोग मुतासर होकर के फिर कुरान के ऊपर ईमान ले आते थे कि हाँ भाई अगर मुसलमान इतने अच्छे लोग होते हैं तो यकीनन इनका दीन सच्चा है। नबी अलैहिस्सलाम सलाम के बारे में कल भी बात हुई थी ना कि सादिक हैं, अमीन हैं, ये जो बात फरमा रहे हैं ये झूठी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो सिद्क صدق و دیانت مسلمانوں نبی علیہ السلام کی اور پھر نبی علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اور پھر صحابہ کے جو شاگرد تھے ان کی صدق و دیانت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اس کی بنیاد پر قرآن کو اور قرآن کی ساری تفصیلات کو قبول کر لیا کرتے تھے کہ ہاں یہی سچا دین ہے. آج کا دور جو ہے سائنس کا دور جس کو کہتے ہیں, اس دور میں ایسے رجال کم ہو گئے, قحط الرجال کا دور کہا جاتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اس دور میں کیا اب چونکہ ایسے لوگ کم ہیں, ہیں تو صحیح لیکن بہت کم ہیں, تو اب جو غیر مسلم ہے وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ اب تو ان کو متاثر کرنے والے مسلمان ہی نہیں ہیں, یا ہے تو بہت کم ہے, اب وہ کیسے متاثر ہوگا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے نا ایک طریقہ یہ بھی رکھ دیا کہ جو تم نے اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے جو پوری ایک 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 سائنس ڈیولپ کری ہے اور اتنے سارے تم نے انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے ہیں نا, تم ان انسٹرومنٹس کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو ان حقیقتوں تک پہنچ سکو گے کہ جو کہ میں نے اپنے قرآن میں اس زمانے میں رکھ دیے تھے جب یہ ساری چیزیں تم نے ڈیولپ نہیں کری, ٹھیک ہے نا. تو اس دور کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر کے پھر ایک انسان جو ہے وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سچ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ اس کو مان لیتا ہے تو پھر اس کو یہ بات یعنی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو شخص اس کلام کو لے کر کے آیا ہے وہ شخص سچا ہے, اس کی باقی ساری باتیں بھی سچی ہے نا. کیونکہ پورے قرآن کے اندر سائنٹیفک میریکلز تو نہیں ہے, سائنٹیفک میریکلز تو چیدہ چیدہ مقامات کے اوپر قرآن میں رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو فائدہ کیا ہوتا ہے ان سے کہ اس کی وجہ سے پورے قرآن کی سچائی جو ہوتی ہے نا وہ اس شخص کے اوپر کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس دور کے اندر اس کو استعمال کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ احسن الخالقین, سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے. احسن یعنی حسن میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے, سب سے بہترین جس کو ہم سب سے حسین, خالقین, خالقین تخلیق کرنے والے, خالق کی جمع ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اگر تم سمجھتے بھی ہو نا کہ جی تم نے بھی اگر کوئی چیز تخلیق کری ہے, ویسے تو اگر آپ اس کی اس لفظ کی جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن پر جائیں تو تخلیق تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, صرف اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری اپنی غلط فہمی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بھی کچھ تخلیق کر لیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کچھ تخلیق کیا بھی ہے نا تمہارے زوم میں, تو تمہاری تخلیق جو ہے نا وہ کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے میری تخلیق کے سامنے. جیسے مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ روبوٹس بنا لے, رائٹ, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لے, بہت ساری چیزیں انسان نے بنائی ہیں آج کے دور کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ میری تخلیق ہے, لیکن اس تخلیق کے مقابلے میں اللہ کی تخلیق جو ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک عام جانور, ایک مکھی جیسی چیز جو ہے وہ ویسی نہیں بنا سکتا انسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو انسان تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اشرف مخلوق ہے, اشرف المخلوقات. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, ایک بچہ کب تک مسلمان ہوتا ہے؟ اگر ایک بچہ کافر کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ کافر ہے؟ یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ کافر کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ کافر ہے. تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے نا, تو دنیاوی تعریف کے حساب سے تو وہ دنیاوی اعتبار سے وہ کافر ہی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کہ اگر وہ بچہ اپنی بلوغت سے پہلے مر گیا تو اس بچے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, बल्कि उसको काफिरों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर काफिर का हुक्म लगेगा। ये नहीं कि जी चूंकि अभी तो बच्चा है, अभी तो बालिग नहीं हुआ था और अभी तो इसको समझ भी नहीं थी, तो इसको जी हम मुसलमानों के साथ अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे, अगर मुसलमानों के लिए मुमकिन है ना, कि भाई मुसलमान मेजोरिटी मुल्क है, सारे मुसलमान हैं और वहां पर कुछ काफिर लोग रहते हैं, तो अब काफिर का बच्चा जो है वो मर गया बचपन में, तो अब मुसलमान कहें कि नहीं जी ये तो बच्चा था, फितरत पर था, मुसलमान था, उसको हम अपने कब्रिस्तान में दफनाएंगे। नहीं, बल्कि माँ बाप के ही दीन का एतबार किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये मामला जो है वो बच्चों के साथ दुनियावी एतबार से है, राइट। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताया, और इसकी एक थोड़ी सी डिटेल भी है इसकी, कि शुरू में ऐसा नहीं था, बाद में बताया अल्लाह ताला के बताने के ऊपर, फरमा दिया कि कयामत के दिन जो जो जो, जो, जो जन्नत में जो बच्चे इस दौर में यानी इस दुनिया के अंदर कुफर के हालत में मर गए लेकिन वो बालिग नहीं हुए थे, तो उन बच्चों को जो है ना वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ठीक है, वो बच्चे जो है वो जन्नत में जो जो बिलदान हैं, जो बच्चे वहां पे खिदमत करने वाले और यानी होता है ना, देख करके खुशी होती है बच्चों को, तो इस तरह के पर्पजेस के साथ जो है ना उन बच्चों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो कि बलूगत से पहले मर गए। राइट, ये जो शरीयत के अहकाम है ना, ये बलूगत के बाद जब बच्चा बालिग हो जाता है, बच्ची बालिग हो जाती है, तब शरीयत के हुक्म उसके ऊपर लगते हैं, और शरीयत का सबसे पहला हुक्म जो है वो ईमान लाना है, ईमान लाना। ठीक है, नमाज पढ़ना नहीं, नमाज पढ़ना तो दूसरा हुक्म है, ये बात तो हम मुसलमान आमतौर पर समझते हैं ना कि जी हमारा बच्चा जो है ना जब बालिग हो जाएगा तो नमाज उसके ऊपर फर्ज हो जाएगी, है ना भाई। तो भाई नमाज तो उस पर फर्ज होगी, लेकिन नमाज से पहले भी तो एक चीज है ना, ईमान लाना। अब हमारे घर के अंदर जो बच्चा होता है तो वो चूंकि मुसलमानों के घर में पैदा हुआ होता है, मुसलमानों के घर के अंदर पल बड़ा होता है, तो उसके यानी वो मुसलमानों यानी अपने माँ बाप के दीन के ही ताबे होता है। ठीक है ना, तो उसको बाकायदा ये नहीं होता कि अच्छा आज मैं बालिग हुआ हूं तो आज मैं कलमे शहादत पढ़ूंगा, सबसे पहले कलमे शहादत पढ़ूंगा उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ना शुरू करूंगा, नहीं, वो तो पहले से कलमे शहादत पढ़ रहा है, वो तो पहले से जो है वो इकरारी है, इकरारी मुमिन है, तो उसको कलमे शहादत पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने बस नमाज पढ़नी है। अगर रमजान का महीना शुरू हो गया तो रोजा रखना है। ठीक है, लेकिन काफिर के अच्छा ये कंटिन्यू करेगा मुसलमान बुलूगत के बाद भी, ठीक है ना, जब तक कि ये खुदा ना ख्वास्ता किसी ईमान की बात का इनकार ना कर दे। अगर ये इनकार कर देगा ना तब ये काफिर हो जाएगा, ये बच्चा बुलूगत के बाद अगर इसने ईमान की किसी बात का इनकार कर दिया तब ये काफिर हो जाएगा, लेकिन इसको इकरार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से इकरार की ही स्टेट में है। ठीक है ना, जबकि काफिर के घर के अंदर जो बच्चा है वो जब बालिग हो गया ना तो अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि वो तौहीद वो शिर्क का इनकार करे। क्या जिम्मेदारी आ गई उसके ऊपर कि वो शिर्क का इनकार करे। ठीक है ना, शिर्क का इनकार करे कि ये जो मेरे माँ बाप कर रहे हैं ना ये सही नहीं है, ये देर हैज टू बी अनदर वे। ठीक है ना, अब उसके सामने अगर मुसलमान है बता रहे हैं उसको कि भाई हमारा दीन इस्लाम जो है वो शिर्क का इनकार करता है और तौहीद का इकरार करता है, तो मुसलमान हो जाओ, तो अब उसके ऊपर लाजिम होगा कि वो मुसलमान हो जाए, और अगर उसके सामने मुसलमान नहीं है, उसके सामने ऑप्शन नहीं है इस वक्त कि दीन इस्लाम क्या चीज होता है, उसको नहीं पता दीन इस्लाम क्या है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि वो दीन वो सर्च करना शुरू करे, तहकीक करना शुरू करे। ठीक है ना, शिर्क का इनकार कर दे और तौहीद की तलाश शुरू कर दे कि मुझे तौहीद कहाँ मिलेगी, मुझे तौहीद कहाँ मिलेगी, ये जिम्मेदारी काफिर बच्चे के ऊपर आती है जब वो बालिग हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि एक बच्चा कब तक मुसलमान होता है। ये बच्चा जो है ना ये जब मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुसलमान माहौल में चल रहा है, तो ये मुसलमान ही रहता है। ठीक है, और काफिर के साथ ये मामला होता है कि जब वो बालिग हो गया तो उसके बाद फिर उसके लिए सर्च करना जो है ना उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से पड़ जाती है। क्या लिबास ईमान से भी पहले फर्ज है? क्या लिबास ईमान से भी पहले फर्ज है? लिबास नहीं, सतर पोशी। हाँ, जिसको अगर आप यानी लिबास का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, सतर पोशी, तो उलमा ने लिखा है कि सतर पोशी जो है ना वो सबसे पहला फर्ज है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जी ईमान से भी पहले फर्ज है, तो पहले जो है वो आप ईमान लेकर के आए फिर आप कपड़े पहने, नाउज बिल्ला। तो या कि मुसलमान होने से पहले आप कपड़े नहीं पहने, बगैर कपड़े के रहें, बगैर लिबास के रहें, और फिर मुसलमान हुए उसके बाद फिर लिबास पहने, ये ऐसी कोई तरतीब नहीं है इसके अंदर, ऐसी कोई तरतीब नहीं है, ठीक है। कि जी पहले ईमान लेकर आएंगे फिर उसके बाद कपड़े पहनेंगे, उससे पहले कपड़े नहीं पहनेंगे, ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मकसद ये है कि सतर पोशी जो है ना ये हर चीज से पहले ईमान से, भाई ईमान तो भाई देखें, ईमान का मामला ये है कि एक बंदा, अल्लाह का बंदा बगैर ईमान के एक लम्हे भी नहीं रह सकता, एक लम्हा भी कुफर, क्या कुफर काबिल कबूल है कि अच्छा आप जो है ना वो अगले 10 मिनट जो है ना वो काफिर रह लें, अगले 10 मिनट काफिर रह लें, तब तक आप कपड़े तलाश कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप 10 मिनट के बाद मुसलमान हो जाएगा। नहीं, कपड़े आपके पास नहीं है, आप उस वक्त तक बगैर लिबास के रह सकते हैं जब तक आपके पास लिबास नहीं है, राइट। लिबास फट गया, आप एक ऐसे जजीरे पर पहुंच गए, आपका जहाज जैसे जो है वो क्रैश हो गया था और समंदर के अंदर आपके लिबास जो है वो खत्म हो गया, फट गया, फिर आपको समंदर की मौजों ने उठा करके एक जजीरे पे फेंक दिया, है ना। अब आपके पास लिबास नहीं है, तो भाई जब तक आपके पास लिबास नहीं है आप बेलिबास रहेंगे, है ना भाई, रह सकते हैं ना बेलिबास, क्योंकि लिबास है ही नहीं। फिर पत्ते वत्ते तलाश करें, पत्तों वत्तों से अपने आप को ढकें, जो भी करें, लेकिन क्या आप बगैर ईमान के रह सकते हैं? बगैर ईमान के शिर्क की हालत में रह सकते हैं? नहीं। शिर्क की हालत में तो एक इंसान एक लम्हा भी नहीं रह सकता। इस वजह से लिबास और ईमान को जो है ना ये आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक अलग चीज है, एक अलग चीज है, ठीक है। तो वो सतर पोशी सबसे पहला फर्ज है, ये बात जो लिखी हुई है ना मारुफुल कुरान के अहकाम हिजाब के टॉपिक में, उसका मतलब ये नहीं है कि पहले ईमान लेकर आएंगे फिर कपड़े पहनेंगे, ठीक है ना, ये तरतीब नहीं है। अच्छा, 7 साल की उम्र में सख्ती करनी चाहिए नमाज में या 10 साल तक नरमी की जा सकती है और स्टार्ट सिर्फ फर्ज नमाज से करना चाहिए? नहीं, मतलब इसकी अहमियत, ये अहमियत पूछने की जरूरत ही क्या थी आपको इसको? नहीं, तो अब चल अहमियत भी समझ में आ गई होगी कि नहीं, लिबास की अहमियत ईमान से ज्यादा नहीं, ठीक है ना, ईमान की अहमियत सबसे ज्यादा है, लिबास की अहमियत उसके बाद है, क्योंकि वो उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है अगर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है ना। चले, नहीं, सख्ती वख्ती का जो मामला है ना नमाज के मामले में, तो वो जो हदीस मुबारका से पता लगता है, वो 7 साल की उम्र में कहना, ठीक है, कि बच्चों को आप नमाज के लिए कहना शुरू कर दें, और फिर जो है वो 10 साल की उम्र में अगर वो ना पढ़े, अगर वो ना पढ़े 10 साल की उम्र में, तो उसको जो है वो जुबान से सख्ती, नहीं पढ़ना है तुमने, ठीक है ना। और फिर 12 साल की उम्र में जो है वो अगर उस वक्त भी ना पढ़े, तो फिर उसको जो है ना वो सख्ती करनी पड़ेगी, हत्ता के मारने की भी इजाजत है, ठीक है। लेकिन मारने की भी शराइत होती है, तो ये तो यानी हदीस मुबारका है ना, 7 साल में कहो, 10 साल में सख्ती करो जुबान से, फिर 12 साल में मारो। तो भाई जैसे कि बहुत सारे दूसरे मुकामात के ऊपर हम ये बात कहते रहते हैं ना कि एक हदीस के अल्फाज पढ़ने से मसला समझ में नहीं आता। कल क्लास के अंदर यही बात हुई थी कि भाई उम्रे से उम्रे के दरमियान जो है वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो अब नमाजें भी माफ हो गई, अब रोजे भी माफ हो गए, हैं भाई, हदीस से तो पूरी बात समझ में नहीं आती ना। तो इसी वजह से तो फिका की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर कुरान मजीद और हदीस मुबारका की तालीमात और इजमाए उम्मत, इन सारी चीजों को कलेक्टिवली जब इंसान देखता है तब उसको फिका हासिल होती है। उसी तरीके से ये जो नमाज का मामला है ना, ये भी कोई ऐसा लीनियर किस्म का, और ये नहीं है कि जी 7 साल की उम्र हो अब आप बोलना शुरू करें, क्या मतलब 7 साल से पहले नहीं बोल सकते, या 7 साल से पहले बोलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल बच्चे को, ये मतलब नहीं है इसका। और इसी तरीके से ये भी इसका मतलब नहीं है कि आप जो है वो 7 साल तक जो है ना वो ऐसे बोलें कि बच्चे को कुछ फर्क ही ना पड़े,
और बच्चा कभी बात ही ना सुने आपकी, है ना, और आप जो है वो बच्चे मिन मिन करके जो है वो हट जाए सामने से, ठीक है ना, तो बच्चा जो है ना वो 7, 8, 9, 10 कोई उसने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि आप जो है ना इतना मतलब प्यार से बोलते थे, क्योंकि सख्ती करना तो जी 10 साल के बाद है ना, तो 10 साल से पहले तो मैं ऐसे बोलूंगा, बहुत ही प्यार से बोलूंगा कि बच्चा खेलकूद में लगा हुआ है तो उसको कोई फर्क ही ना पड़े। तो 3 साल गुजर गए, बच्चे ने नमाज ही कोई नहीं पढ़ी। अब 10 साल के वक्त जो है ना, अब आपको हदीस याद आ रही है, अच्छा 10 साल में फरमाया था कि अब सख्ती करो, अब जो है ना अब आपने डांटना शुरू कर दिया, और अब आप ये समझते हैं कि आपके डांटने की वजह से जो है ना बच्चा जो है ना वो अब तो नमाजी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हदीस मुबारका के अल्फाज तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक कोई समझाने वाला ना होना, सिखाने वाला ना होना, हमें हदीस से बात समझ में नहीं आती, हम कुछ का कुछ बना लेते हैं उसको, ठीक है ना, बहुत ही खराब मामला हो जाता है। और फिर बात ये आती है कि जब वो बालिग होता है ना, तो फिर उसके बाद दे डंडा दे धनाधन, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ था जी 10 साल 12 साल के बाद मारो, तो अब जो है मारना शुरू कर दिया 12 साल के बाद, ठीक है ना। वो इसी वजह से सारी हरकतें हो रही होती हैं कि हम पूछ के नहीं चल रहे होते, सीख के नहीं चल रहे होते, है ना, हम किताबी फॉर्म, हम किताबी दीन के ऊपर, थ्योरेटिकल दीन के ऊपर अमल करने की अपने मन मर्जी से कोशिश कर रहे होते हैं। शैतान हमारे साथ लट्टू का गेम खेल रहा होता है असल में। जब हम किताबी दीन की कोशिश करते हैं ना, फिर हम एक लट्टू बन जाते हैं, और आपको पता है लट्टू के साथ फिर क्या होता है, उसको उसके गिर जो है वो रस्सी लपेटी जाती है, और क्यों करके उसको फेंका जाता है, अब वो नाच रहा होता है लट्टू, जमीन के ऊपर घूम रहा होता है लट्टू। तो यही लट्टू वाली कैफियत जो होती है ना, वो हमारी बन जाती है जब हम दीन को किताबों से हासिल करने की कोशिश करते हैं, हदीस की किताबें हों या तफसीर की किताबें हों या जो भी किताबें हों, हम शैतान के हाथ में लट्टू बन जाते हैं। ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद वही पछतावे क्या होगा, जब चिड़ियां चुग गई, खेत जब वो चिड़ियां चुग 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 के चली जाती है ना, अब वो जाए वो फिर पछता रहे होते हैं, अच्छा मेरा बच्चा खराब हो गया, मेरा बच्चा बनाना हो गया, मेरा बच्चा ये हो गया। भाई आप पहले जो है वो क्या समझ रहे थे अपने आप को, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो तरीका है नबी अलैहिस्सलाम का सिखाया हुआ सुहबती दीन वाला, हमें दीन वैसे ही हासिल करना है, और अगर नहीं मिल रहा, कोई मुश्किल हो रही है, तो भाई अल्लाह से दुआएं मांगे ना, अल्लाह ताला से मदद मांगे ना, अल्लाह आप आसान फरमा दें, अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे फिर इस वाले सोबत की को हासिल करना, ठीक है। अच्छा सवाल जो एक इन्होंने लिख दिया था शुरू में, वो चूंकि क्लास का वो खत्म हो रहा है, तो ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नहीं मसलक क्या होता है, क्यों डिफरेंस है कि कोई बरेलवी है, कोई दियोबंदी है, कोई अहले हदीस है। भाई क्यों डिफरेंस है, उसकी वजह ये होती है कि यानी मसलक का जो लफ्ज है ना, ये निकला सुलूक से, सुलूक का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो जब इंसान किसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो वो चलता है, चल करके मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है ना, तो वो चलने की शक्ल गाड़ी में बैठ के चलना हो या जहाज में बैठ करके चलना हो, लेकिन बहरहाल चलना ही होता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर करना होता है, ठीक है। तो जब इंसान चलता है ना, तो चलने से जो है फिर रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से सुलूक जो है ना, ये एक्चुअली सुलूक का लफ्ज जो है वो रास्ते के लिए इस्तेमाल होता है, रास्ता, ठीक है ना। तो आप किसी रास्ते को अवरोध करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये जो रास्ते हैं ना, ये रास्तों के अंदर जो है कभी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो तब्दीलियां हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मक्का मुकर्रमा पहुंचना है, ये हमारी यानी उमरे की डेस्टिनेशन जो है वो मक्का मुकर्रमा है। अब अगर आप जो है वो इंडिया से आ रहे हैं, तो मक्का मुकर्रमा पहुंचने के लिए आपका एक अलग रास्ता होगा, अगर आप जो है वो यूरोप से आ रहे हैं तो एक अलग रास्ता होगा, और कहीं से अलग रहा अफ्रीका से अलग रास्ता होगा, ठीक है ना। मंजिल एक ही है, रास्ते मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, ठीक है। तो ये जो मसलक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ रास्तों के लिए, ठीक है। तो दीन के अंदर भी जो है वो थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ रास्ते होते हैं एक मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब रास्तों में जो है ना, वो एक बात तो समझ में आ गई ना कि जी आपने मंजिल तक पहुंचना है, تو اب آپ نے راستہ اختیار کرنا ہوگا, اور راستے جو ہیں وہ لوگوں کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن ویئر دے آر اسٹارٹنگ فرام, رائٹ. انڈیا سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو راستہ مختلف ہے, یورپ سے الگ راستہ ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تھوڑی سی ایک اور بھی تفسیر یہ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو راستے ہیں نا, راستے کے اندر آپ کی نیت تو ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے, رائٹ. نیت تو آپ کی یہ ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو آپ نے راستے کا تعین کیا ہے, اس راستے کا تعین کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہوگی, ہے نا. راستوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے نا, ہاؤ ٹو فائنڈ یور وے, رائٹ, ہاؤ ٹو اسٹے آن دا ٹریک. کہ ایسا نہ ہو کہ جی آپ نے شروع میں تو آپ نے لکھ لیا اپنے پاس کہ ہاں جی یہ ڈائریکشنز ہیں, لیکن پتا چلا آپ راستے میں جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں مگن ہو گئے اور آپ ان ڈائریکشنز کو فالو نہیں کر سکے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نیت تو تھی منزل تک پہنچنے کی, لیکن راستہ آپ صحیح مینٹین نہیں کر سکے, تو اب آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے. یعنی انڈیا سے چلے تھے, انڈیا سے مکہ مکرمہ پہنچنے کا راستہ یورپ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے راستے سے مختلف تھا, ٹھیک ہے نا. نیت دونوں کی تھی مکہ مکرمہ پہنچنے کی. ایک صاحب جو ہے وہ انڈیا سے چلے اور انہوں نے جو ہے نا وہ راستے کو بالکل صحیح صحیح اس کا علم حاصل کیا اور صحیح صحیح اس کو مینٹین کیا, وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اور ایک صاحب جو ہے وہ یورپ سے چلے, نیت ان کی بھی مکہ مکرمہ کی تھی لیکن وہ راستے کا صحیح علم حاصل نہ کر سکے, راستے کے اوپر اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے. نیت تو بڑی اچھی تھی جی, لیکن پہنچیں گے کدھر, مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکے, کہیں اور ہی پہنچ گئے, عراق پہنچ گئے فار ایگزامپل, رائٹ, ٹرکی پہنچ گئے, افریقہ پہنچ گئے, مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکے. نیت تھی ان کی مکہ مکرمہ پہنچنے کی, ٹھیک ہے نا. تو یہی معاملہ جو ہے نا وہ دین میں بھی ہوتا ہے. دین میں بھی منزل تک پہنچنے کے جدا جدا راستے تو ہوتے ہیں, لیکن علم, راستے کا صحیح علم یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ نیت ضروری ہے, رائٹ. تو اب یہ جو مختلف آپ نے مسلک کے نام لکھ دیے نا یہاں پر, دیوبندی مسلک اور اہل حدیث مسلک اور بریلوی مسلک, تو یہ بھی راستے ہیں پہنچنے کے. نیت سب کی ہوتی ہے منزل تک پہنچنے کی, یعنی اللہ کی رضا. رضا یہ منزل ہے ہماری مسلمان کی, ٹھیک ہے. یہ سب مسلمان ہیں, اہل حدیث بھی مسلمان ہیں, دیوبندی بھی مسلمان ہیں, بریلوی مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. لیکن راستے کا علم جو ہے نا یہ بھی مختلف ہے. نیت سب کی ایک ہے, لیکن علم جو ہے نا وہ ان کا تھوڑا سا ایک الگ علم کا طریقہ ہے, ان کا علم کا طریقہ الگ ہے, ان کے علم کی تفصیلات الگ ہیں, بہت زیادہ الگ نہیں ہے. وہی قرآن عظیم الشان کو سب مانتے ہیں, حدیثوں کو بھی یہ تینوں کے تینوں مانتے ہیں, تقریباً ساری حدیثیں ان سب کے درمیان کامن ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ اصولوں کا اختلاف ہے, اصولی طور پر کہ بھئی اصول حدیث کی کچھ باتیں اہل ڈفرنٹ ہیں, بریلویوں کے ڈفرنٹ ہیں اور دیوبندیوں کے ڈفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. بلکہ اہل حدیث اور ان دونوں کے درمیان ڈفرنٹ ہے, باقی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان تھوڑے سے اور ڈفرینسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو علمی ڈفرینسز ہیں نا, ان علمی ڈفرینسز میں سے کچھ ڈفرینسز جو ہے وہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جس سے کہ منزل بھی ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہے کہ جی منزل تک بھی پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے. ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں. اب کس کے دلائل زیادہ صحیح ہیں, کس کے دلائل کم صحیح ہیں, یہ جاننا جو ہے وہ ایک پروسیس مانگتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی کس کے دلائل زیادہ صحیح ہیں, کس کے دلائل کم صحیح ہیں, یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہم آپ کی کلاس کے اندر آپ کو بتا بھی نہیں سکتے, یعنی کیونکہ ہے اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیپتھ, اتنی زیادہ تفصیل اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہیں وہ دلائل لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو صرف اس وقت اتنا بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ اس وقت جن سے یہ تفسیر کی کلاس پڑھ رہی ہیں نا, ہمارا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کے ساتھ, ہم نے جو بھی وقت گزارا ہے وہ علماء دیوبند کے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے, اگرچہ کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا گزارا تھا پہلے شروع شروع کے دور میں, ٹھیک ہے نا. ہمیں جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اپیل جو ہے وہ ان حضرات جو علماء دیوبند کہلاتے ہیں, ان کی پرسنالٹیز نے, ان کی شخصیات نے, ان کے سنت اور شریعت کی پابندی نے, رائٹ, और उनके दीन के एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसके अंदर सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जो हमारे जहन में आते थे, हमारे दिल में उठते थे, सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, ठीक है ना। हर किस्म के, हर एस्पेक्ट को कवर किया, ठीक है ना, और इल्म की गहराई, ये सब की सब हमें उलमाए दियोबंद के पास नजर आई। हालांकि हम पैदाइशी तौर पर कोई दियोबंदी नहीं थे, हमारे माँ बाप को शायद पता भी नहीं था ये चीजें क्या होती हैं, हमारे पूरे खानदान के अंदर इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट। ज्यादा से ज्यादा जो है वो, हाँ, वो मिलादें कर लिया करते थे, वो हमें ज्यादा बचपन में जो है वो खालाएं और वो सब जो है वो मिलादें किया करती थी और इस किस्म की चीजें होती थी, राइट। उससे ज्यादा हमें कुछ दीन का नहीं पता था। हमने तो वक्त गुजारा, उनके साथ भी कुछ वक्त गुजारा, इनके साथ भी कुछ वक्त गुजारा, इनके साथ भी गुजारा, हमें तो सबसे ज्यादा बात यही समझ में आई कि भाई यही जो उलमा है ना, जो कि देवबंदी मसलक के होते हैं, इन्हीं के पास सारे सवालों के जवाब थे और गहराई थी इल्म की और इखलाकियात भी थी और शरीयत सुन्नत की पाबंदी भी थी, ठीक है। बस वजह से हमने इस रास्ते को पसंद कर लिया। बाकी आप अगर इस प्रोसेस को गुजरना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, मैं मरने का असल मतलब क्या है, मैं मरने का असल मतलब क्या है, किसी की तजलील करने या तारीफ करने के नतीजे में दिल में कैफियत का ना बदलना। मर्द बिल्कुल ही खामोश बैठे हुए आज, डर है अगर हमने सवाल कर लिया तो आज का टाइम बहुत बढ़ जाएगा, जैसे रोजाना आजकल बढ़ रहा है। खवातीन की तरफ चले, ठीक है, कुछ तो सवाल आ रहे हैं। तो इन्होंने एक सवाल व्हाट्सएप पर ही पूछा था कि मैं मरना, अपनी मैं को मार लो, क्योंकि पिछली कल की क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में गालिबन बात हुई थी कि घरों के अंदर जो झगड़े होते हैं ना, उनकी जो सादा सी वजह बनती है वो तो दीन से दूरी होती है, राइट। लेकिन दीन से दूरी जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि जी आप टीवी देख रहे हैं और आप फिल्में देख रहे हैं और मौसीकी सुन रहे हैं और आप जो है वो पर्दा नहीं कर रहे, तो इसको दीन से दूरी कहते हैं। तो कुछ लोगों ने इन चीजों को तो दूर कर दिया अपने अंदर से, लेकिन घर के अंदर अभी भी प्यारो मोहब्बत नहीं पैदा हुई, अभी भी वही चिक चिक, अभी भी वही मसले। हालांकि इस तरह के गुनाह आप नहीं कर रहे हैं तो दीन पर आ गए हैं, फिर भी मसले। तो उसके ऊपर बताया था कि एक और भी मसला होता है कि इंसान की मैं खत्म नहीं हो रही हो, बेशक वो इन दीन की बातों के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है लेकिन अपनी मैं को नहीं मारता ना, तो हर चीज में मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, मैं, राइट। फिर उसमें बताया था कि जी बकरी की जो मैं होती है ना, वो फिर गले पर छुरी फिरने से खत्म होती है। उसी तरीके से मशायख फरमाते हैं कि इंसान की मैं कभी ये हाल है, राइट, वो मैं करता रहता है जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से ना फिर उसके ऊपर कोई बड़ी आजमाइश, कोई बड़ा अजाब नहीं आ जाता, फिर उसके बाद जो है ना उसकी मैं खत्म होती है। तो भाई हमारे बुजुर्ग हमें बार बार ये बात समझाते हैं कि अपनी मैं को हम खुद मार लें, अपनी मैं को हम खुद मार लें, क्योंकि जो अपनी मैं को खुद नहीं मारता फिर उसकी मैं को अल्लाह ताला मारते हैं, और जिसकी मैं को अल्लाह ताला मारते हैं उसका तमाशा दुनिया देखती है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला उसको बायस इबरत बना देते हैं, अल्लाह ताला उसको बायस इबरत बना देते हैं दूसरों के लिए। भाई क्यों अपने आप को इस मुश्किल के अंदर डालते हैं, पहले अपनी मैं खुद से मार लें। अपनी मैं मारने का मतलब यही होता है कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना, राइट, अपने आप को तरजीह ना देना बल्कि दूसरों को तरजीह देना। अब ये दूसरों को तरजीह देना, ये हम आमतौर पर समझते हैं कि जी बस दूसरे इंसानों को तरजीह देना, राइट, ईसार जिसको कहते हैं, नहीं, सिर्फ दूसरे इंसानों को तरजीह देना ये नहीं है मैं को मारना, बल्कि सबसे पहले तो अल्लाह को अपने ऊपर तरजीह देना, अल्लाह को अपने ऊपर तरजीह देना, क्योंकि सबसे ज्यादा हक हमारे ऊपर अल्लाह का है, राइट। अल्लाह भी तो हमारे अलावा है ना, यानी ये कोई थोड़ी है कि मैं हूं और मैं ही अल्लाह भी हूं, नाउज बिल्ला, अनल हक, भाई अनल हक तो एक अलग किस्म की चीज थी, हम तो ये अनल हक नहीं कह सकते ना कि मैं भी अल हक हूं। तो भाई अल्लाह जो है वो मेरा परवरदिगार है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैंने अल्लाह को अपने ऊपर तरजीह देनी है। क्या मतलब, मैंने अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, अपनी चाहतों के ऊपर अल्लाह की ख्वाहिश को तरजीह देनी है, राइट। जब अल्लाह की ख्वाहिश को तरजीह देते हैं ना, तो फिर انسان کی میں جو ہوتی ہے نا، میں یعنی میں اپنے آپ کو ترجیح دوں، یہ میں جو ہوتی ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہو. جتنا زیادہ اللہ کو ترجیح دیتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ میں جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو میں کو ماننے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کو ترجیح دینا. اب اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل یہ آتی ہے کہ بھئی اللہ کو ترجیح دینے کے لیے کیا مطلب ہے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب مجھے کوئی کام کرنے کو کہیں تو میں اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ دوں اور اللہ کی خواہش کے مطابق وہ کام کر لوں، ٹھیک ہے نا. تو اب جی اس میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مجھے پانچ نمازیں پڑھنے کے لیے کہا ہے تو میں جو ہوں نا وہ پانچ نمازیں پڑھ لیا کروں، یہ اللہ کو ترجیح دینا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب ہم ماشاءاللہ جتنے دیندار لوگ موجود ہیں، I'm sure ہم سب جو ہیں وہ پانچ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، تو اللہ کو ہم نے ترجیح دی نا کہ اس وقت میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنا کام چھوڑ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، اس وقت کو اپنے پاس سے نکال کر کے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت کر دیتے ہیں. اچھا جب ہم یہ سب کر لیتے ہیں، پانچوں نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ہماری میں مر جاتی ہے نہیں؟ ابھی تک تو شاید مر کے نہیں دی، پتہ نہیں کتنی اور نمازیں پڑھیں گے اس کے بعد جا کے مرے گی، رائٹ. اچھا اللہ کا حکم دوسرا جو ہے وہ روزے رکھنا، تو ماشاءاللہ سارے روزے رکھ رہے ہیں، لگتا ہے مطلب میں مر گئی یہ تو نہیں نظر آتا، روزے تو رکھ رہے ہیں میں تو نہیں مر رہی، ٹھیک ہے نا. بہت سارے اور فرائض ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں میں نہیں مر رہی ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں مر رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں مر رہی ہوتی، لیکن ایک سرٹن پروپورشن میں مر رہی ہوتی ہے اور باقی پروپورشن ہمارا نہیں مر رہا ہوتا. تو فرائض پر عمل کرنے سے جتنا کہ ہم عمل کر رہے ہیں اس سے میں مرتی ہے، لیکن 10% 20% کسی کی 30% اس سے زیادہ نہیں مرتی. تو اس وجہ سے میں کو پورا مارنے کے لیے جو ہے نا پھر اس سے زیادہ بھی کرنا پڑتا ہے. اور وہ زیادہ کیا ہے کہ اللہ کے جن حکموں کو ہمیں پہلے سے پتا ہے، جن کو ضروری احکامات کہتے ہیں نا، وہ ہم نے اپنے ماں باپ سے سننے یا کسی مولوی صاحب کے بیان میں سن لیا ہے، کسی کتاب میں پڑھ لی ہے، یہ وہ احکامات ہیں، ٹھیک ہے نا. ان احکامات کو جو کہ ہمارے پاس تک ہم تک پہنچے ہیں ان کامن ذرائع سے، ان کو مان لینے سے ہماری میں جو ہے نا وہ 30% مر جاتی ہے، 70% نہیں مرتی. یہ میں ایسی ایک ایسٹیمیشن کے طور پہ 30-70 بول رہا ہوں، کسی کا 20 اور 80 بھی ہو سکتا ہے، 20% مر جاتی ہے، 80% نہیں مرتی، ٹھیک ہے نا. اب 80% کیسے مرے گی؟ یس کسی کی 60% رہ گئی ہے تو وہی 60% کیسے مرے گی؟ وہ ایسے مرتی ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ترجیح دیتے ہیں نا، تو اس ریمیننگ 70% میں سے پھر ہماری مزید 30% جو ہے نا وہ مر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نمبرز جو ہے نا یہ بس ایک آپ کے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. امید ہے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ دس از ناٹ ایگزیکٹ نمبرز، یہ بس سمجھانے کے لیے. ہاں بھائی اس سے اتنی کچھ پرسنٹ اس سے مر جاتی ہے، اللہ کے جو ضروری احکام ہیں ان کو ماننے سے کچھ پرسنٹ مر جاتی ہے، پھر اس کے بعد بندوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے سے کچھ اور پرسنٹ مر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اچھے اخلاق اور اچھے معاملات، دوسروں کو ترجیح دیا، ایثار کا معاملہ کیا اور مر گئی، لیکن آخر میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے، آخر میں تھوڑی سی رہ جاتی ہے. جیسے 30% فار ایگزامپل رہ گئی، 70% مر گئی فرائض کے اوپر عمل کرنے سے، اور بہترین حقوق و لباد کا معاملہ جو ہم نے کرنے کی کوشش کری ہے نا اس سے 70% مر گئی، 30% ابھی بھی رہ گئی. اب یہ آخر کی جو 30% ہے یہ کیسے مرے گی؟ کیونکہ اس کو بھی مارنا ضروری ہے. جب تک یہ 30% بھی رہے گی نا ہم گڑبڑ کرتے رہیں گے، ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہیں گے. یہ 30% جا کر کے کیسے مرے گی؟ اس 30% کو مارنے کے لیے بندے کو، انسان کو، مسلمان کو کسی ایسی ایک شخصیت کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے کہ جو کہ اس کا شیخ کہلائے، رائٹ. کسی ایک ایسے فرد، اور وہ فرد جو ہے وہ کوئی ایسے ہی ویسے ہی کوئی فرد نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ ایک مستند اور ایک شریعت اور سنت کا پابند، جس کو کہ اس کے مشائخ نے دین کا کام کرنے کا حکم کیا ہوتا ہے، ये शख्स कहलाता है शेख, राइट, इस्लाह नफ्स के लाइन वाला जो शेख होता है ना, तसव्वुफ का शेख उसको कहते हैं। ऐसे शख्स के सामने जब इंसान अपने आप को सुपुर्द करता है ना, ठीक है, तस्किया नफ्स के लिए, तस्किया कल्ब के लिए, तो इस शेख की तरबियत में रह करके, इस शेख की डांट डपट और इस्लाह के जरिए से इसकी जो बाकी मानदा 30% अप्रोक्सीमेटली मैं रह गई थी ना, ये भी मर जाती है। यानी पूरी 30% ना भी मरे, 25% मरती है, 28% मरती है। और कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ऐसे मेहनत करने वाले बंदे होते हैं, ऐसे सिंसियर बंदे होते हैं कि उनकी पूरी की पूरी 30% मर जाती है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अपने आप को सुपुर्द किया होता है, ज्यादा जो है ना वो मुजाहिदा किया होता है अपने ऊपर, उनकी पूरी 30% मर जाती है, ठीक है ना। तो ये मैं मारना जो है ना, ये ऐसे होता है। और इतनी तफसील इसके अंदर इसलिए क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, हम इस दुनिया में इसीलिए भेजे गए हैं कि हम अपनी मैं को मार रहे हैं, राइट, ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ये है ना, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। तो बंदगी की जो अल्टीमेट शक्ल है, बंदगी की जो कामिल शक्ल है, वो अपनी मैं को मार लेना है, अपनी मैं को मार लेना, ये है बंदगी, यानी 100% बंदगी, कामिल बंदगी, ठीक है ना। तो भाई हमें पैदा ही इसलिए, हम ये जो कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, मकसद इसका यही है कि हम अपनी मैं को मार लें। ये हम एक सबब इख्तियार कर रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन असल मकसद तो मैं को मारना है, राइट। अगर कुरान की तफसीर आपने खूब सारी पढ़ ली, खूब सारे आपको बातें पता चल गई, लेकिन मैं मारने की कोई मेहनत ही ना करी, वही 30% पे ही चले चले आ रहे हैं, फराइज बस नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, और तो ये जो कुरान की तफसीर है, इस तफसीर के पढ़ने से कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान ही हो जाए उल्टा, क्योंकि अंदर मैं मौजूद है, ये मैं जो है ना फिर कुरान की तफसीर को जो है वो यानी गलत इस्तेमाल करेगी और मुतकब्बिर बनाएगी। हाँ देखो मुझे कुरान की तफसीर आ गई है, मुझे तर्जुमा आ गया, मुझे इतना इल्म हासिल हो गया, देखो मेरे खानदान में तो कोई नहीं पढ़ता और मेरे दोस्तों को जो है वो कुछ नहीं पता कुरान के बारे में, मुझे आ गया है और मैं जबरदस्त हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, राइट, बेड़ा गर्क। मैं नहीं मरी थी, यही बात एक क्लास में इस अंदाज से कही थी, तस्किया नफ्स नहीं हुआ था, तो इस वजह से दीन का इल्म भी नुकसानदेह हो गया, ठीक है ना। तो मैं मारना जो है ना, बस ये मक्खी मारने की तरह की चीज नहीं है, एक कागज अखबार उठाया और जाके मक्खी मार दी, ये मैं मारना है भाई, और ये तो हमारी जिंदगी का मकसद है, ठीक है। कैन समवन बी अ नक्शबंदी है ना, तबलीगी एट द सेम टाइम, ये भी इन्होंने एक पहले व्हाट्सएप के ऊपर भेजा था। तो इस सवाल को चूंकि इस वक्त जो है ना वो आप अगर अगली क्लास में पूछते हैं, क्योंकि एक और ने भी यहाँ पे मर्दों में सवाल लिखा हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं और टाइम भी ज्यादा हो गया है। हाउ इज एक्सेप्टिंग इस्लाम बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रूफ्स डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रूफ्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एतमाद ऑन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह सुब्हान व तआला आल्सो आस्क्ड हिज बिलीवर्स टू सी हिज साइंस एंड यूज रीजंस। एक्सेप्टिंग इस्लाम बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रूफ्स, ठीक है, कल जो बात हो रही थी ना, आप शायद उससे इसको टाई इन कर रहे हैं कि अपनी अकल के ऊपर एतमाद करते हुए इस्लाम को सच मान लेना, ये ईमान नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को सच्चा मान करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर एतमाद करना, ये ईमान है, ठीक है ना। तो शायद आप उससे इसको कंफ्यूज कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं कि साइंटिफिक प्रूफ जो है ना, ये भी तो फिर अपनी अपनी यानी मुशाहदे और अपने दलाइल की बुनियाद पर मानना है, ठीक है ना। तो भाई आपको इसी वजह से लेक्चर के दौरान ही ये बात बताई थी कि अल्लाह ताला ने ये जो कुरान मजीद है ना, ये पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जैसे हमारे मशायख फरमाते हैं, कुरान ये साइंस की किताब नहीं है, ये किताब हिदायत है, राइट, यानी आखरत के लिए हिदायत और गैब के लिए हिदायत, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी साइंस की किताब थोड़ी है, इसमें तो बहुत थोड़े से साइंसी दलाइल है, बहुत थोड़े से, ठीक है ना। तो इन साइंसी दलाइल का मकसद ये नहीं होता कि इसकी आप जो है वो सिर्फ ये कि भाई हाँ ये तो साइंस की बुक है ना, और साइंस जो है ना इट इज द अल्टीमेट रियालिटी ऑफ द यूनिवर्स, तो दैट इज वाई आई बिलीव कि ये किताब जो है वो सच्ची किताब है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी साइंटिफिक रियालिटीज है. नहीं, साइंटिफिक रियालिटीज बस इतनी सी हैं कि जो कि आपको इस तरफ माइल करें कि भाई ये किताब जो है ना, ये जब इसके अंदर ये जो 5% डिटेल्स हैं ये एम्पिरिकली प्रूवेबल हैं. एम्पिरिकल एविडेंस कहते हैं ना साइंस, साइंसदान इसको, राइट, एम्पिरिकली यानी मैथमेटिकली और अपने मुशाहिदे के जरिए से और अपने यानी जो आपने ऑब्जर्वेशन करी हुई है और जो एक्सपेरिमेंटेशन करी हुई है इसकी बुनियाद पर 5% चीजें इसके अंदर बिलीवेबल हैं और ऐसी बिलीवेबल हैं कि जो के यानी पहले मुमकिन ही नहीं था 1400 साल पहले इन चीजों का मालूम होना. तो ये बात जो है वो इस तरफ पॉइंट कर रही है कि बाकी चीजें भी जो है ना वो सच है. ठीक है, तो इतनी सी इसके अंदर अकल का इस्तेमाल है, ठीक है ना. लेकिन बाकी जो चीजें हैं 95% वही बात कि मैं एक अप्रोक्सीमेट नंबर ही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली कोई 95% 5% वाला मामला नहीं है. तो बाकी जो लेट्स से 90% जो चीजें हैं वो तो एम्पिरिकली प्रूवेबल नहीं है ना, राइट, वो तो आप मुशाहदे से नहीं देख सकते ना, वो तो आप जो है वो क्या कहते हैं अपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से आप उनको नहीं समझ सकते ना. ठीक है ना, आखिरत की बातें और पिछली कौमों के ऊपर जो हालात गुजरे हैं और अल्लाह की शान के बारे में है, फरिश्तों के बारे में है और जन्नत के बारे में है, जहन्नुम के बारे में, इसके लिए कौन सा एम्पिरिकल एविडेंस और एक्सपेरिमेंटेशन लेकर के आएंगे. ठीक है ना, तो साइंटिफिक दलाइल की बस इतनी सी हैसियत है. दिस इज वॉट बेसिकली जो आपको कहने की, जो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो ये थी कि भाई उस जमाने में रिजालुल्लाह को देख करके वही काम होता था जो कि आज के जमाने में साइंटिफिक मिरेकल्स को देख करके हो रहा है. ठीक है ना, और एट द सेम टाइम ये भी याद रखें कि इस जमाने में भी साइंटिफिक मिरेकल्स इज नॉट द ओनली साइंस, और भी चीजें हैं. आज भी रिजालुल्लाह भी मौजूद हैं और दूसरी टेक्नोलॉजीज भी, दूसरे साइंसेज भी हैं. ठीक है ना, कि जिनके जरिए से कुरान की तरफ अल्लाह ताला इंसानों को माइल फरमाते हैं. ठीक है, तो यानी आपका फिर सवाल एक दफा फिर पढ़ लेता हूँ कि हाउ इज एक्सेप्टिंग इस्लाम बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रूफ्स डिफरेंट फ्रॉम एक्सेप्टिंग इट बिकॉज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रूफ्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एतमाद ऑन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हाँ, तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जो एतमाद किया है तो वो ऐसे को थोड़ी किया था ना, लोगों ने देखा था ना कि भाई ये जो शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका माजी इतना यानी फ्लॉलेस माजी है और इतने जो है वो सच्चे हैं, अमीन हैं और इतने अच्छे अखलाक वाले हैं और ये हैं वो हैं, ये सब कुछ देख करके फिर लोग जो है वो बांधते थे कि हाँ इनकी जो ये वाली बताई हुई बातें हैं ना कि जो कि हम प्योर फेस वैल्यू पर, प्योर जो है वो इनकी कहने की बुनियाद पर हमें माननी है, हम उनको भी मानते हैं. ठीक है, अब हर शख्स ने नबी अलैहि सलाम को ऐसे नहीं देखा था, बल्कि नबी अलैहि सलाम ने जो अपने शागिर्द तैयार किए थे वो शागिर्द भी ऐसे ही थे कि जिनको देख करके लोग जो है वो मान लेते थे कि हाँ इतने अच्छे लोग हैं. तो जो दीन है ये दीन भी सारा का सारा सही है. फिर अल्लाह ताला जो है ना वो अपने साइंस को कुरान के अंदर जिक्र भी करते हैं और उनका भी जिक्र करते हैं. इवन उस जमाने में भी जिस जमाने में साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद नहीं थी, प्योर ऑब्जर्वेशन मौजूद थी, है ना. अफला ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت, है ना. उस जमाने में उन लोगों के ऑब्जर्वेशंस इसी हद तक थी, ज्यादा से ज्यादा आसमान को देखते थे और जमीन को देखते थे और पहाड़ों को देखते थे और ऊंट को देखते थे. ठीक है ना, तो अल्लाह ताला अकल के इस्तेमाल करने की तरफ हमें पॉइंट करते हैं. लेकिन जो गैब वाली बातें हैं, राइट, उन गैब वाली बातों, असल जो जो ईमान है वो उन गैब वाली बातों को मानते हैं. ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी अल्लाह ताला ने ऊंट को देखने कहा तो हाँ भाई ऊंट तो वाकई है दुनिया के अंदर, तो हाँ भाई हम ऊंट को देखा करेंगे, हम पहाड़ को देखा करेंगे, हम आसमान को और जमीन को देखा करेंगे, ये मकसद है इस आयत का, फला यंदुरून इलैहि. नहीं, ये मकसद नहीं है इस आयत का. मकसद तो यह है कि तुम बाकी चीजों को मानो जो कि तुम नहीं देख सकते हो. ठीक है, बहरहाल तो एतमाद अल अकल जो है ना, उसका मामला बस ये था कि जैसे मैंने आपको जुमला भी आखिर कल क्लास में कहा था कि मैं इन रियलिटीज तक अपनी अकल से पहुंचाऊं, जैसे आखरत वाली रियलिटी थी और है ना तौहीद वाली रियलिटी थी, अकल से पहुंचाऊं, एंड बिकॉज इट हैपेंस टू कोइंसाइड विद व्हाट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हैज सेड राइट, दैट इज व्हाई आई एम अ मुस्लिम। मेरी अकल और उनकी बात जो थी ना, ये मैच कर रही है, इस वजह से मैं अपने आप को मुसलमान कह रहा हूं। ये ईमान नहीं, इस बात को समझे कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है, और वो एक डिफरेंट स्टेटमेंट है कि आप जो है वो मुशाहिदे और अपनी अकल को इस्तेमाल करके जो है ना वो ये बात प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को कि नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, ये कुरान सच्चा है, ठीक है। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, इन दोनों के डिफरेंस को जो है ना जरा सा सोच करके अपने ध्यान में क्लियर कर लें, इंशाल्लाह आसानी होगी। चलिए, बहुत देर हो गई है, वाखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह।